verse 57, negation of what is not true should be done through the process of logic and reasoning. This Vedantic process of repudiation will lead you to the never-ending realm of Brahma. देखो, ये वही जो हम अभी बात डिस्कस कर रहे थे कि नेति नेति जो क्रिया होती है कि जो भी है, जो भी जाना गया है, वॉट एवर इज नोन, उसको लॉजिक और रीजनिंग का इस्तेमाल करके पूरा हटा दिया जाता है, निकाल दिया जाता है. और ये जो प्रोसेस है उससे जब सब कुछ निकल जाता है तो क्या बचता है? सिर्फ ब्रह्म ही बचता है. सिर्फ आप उसको कभी निगेट नहीं कर पाते, बाकी हर चीज़ निगेट हो जाती है लॉजिक एंड रीजनिंग से. सो दैट इज़ वॉट इज़ लेफ्ट. वो कह रहे हैं देखो, अगर शॉल पहनी हुई बहुत सारी औरतें बैठी हों, सूरज की धूप खा रही हों, और कोई आता है पूछता है कि प्रमिला कहाँ है, यू नो दे आर लुकिंग फॉर प्रमिला, और एक आदमी उनको बोलता है कि देखो जिसने पीली शॉल पहनी है वो प्रमिला नहीं है, जिसने लाल पहनी है वो भी प्रमिला नहीं है, जिसने काली पहनी है वो भी प्रमिला नहीं है, जिसने नीली पहनी है वो भी प्रमिला नहीं है. तो अब ये क्या हुआ, वी आर नोइंग बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सक्लूजन कि ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है. तो क्या होगा, तो आप जो भी देखने वाला है वो देख पाएगा कि अच्छा इसके बाद कौन बचा, उसके बाद एक पिंक शॉल वाली बची, तो इसका मतलब पिंक शॉल वाली प्रमिला है. ये आप समझ रहे हो, एक तरीका है कहने का सीधा कि वो जो पिंक शॉल वाली है, जो पांच औरतें बैठी हैं, पिंक शॉल वाली इज़ प्रमिला. दूसरा तरीका कहने का ये है कि लाल वाली नहीं है, पीली वाली नहीं है, नीली वाली नहीं है, काली वाली नहीं है, तो क्या बचा, पिंक वाली बची. तो जो वेदांत होता है, वेदांत में आपको ऐसे ही बताया जाता है. वेदांत में आपको ये नहीं बताया जाता कि पिंक वाली वो जो है, क्यों, यहाँ पे तो हम पॉइंट आउट कर सकते हैं कि वो पिंक वाली क्योंकि कुछ गुण है, है ना, एक गुण है, पिंक इज़ अ गुण, ब्लू इज़ अ गुण, येलो इज़ अ गुण, इट इज़ अ कलर, यू कैन पॉइंट इट आउट. लेकिन जो ब्रह्म है उसको कभी पॉइंट आउट नहीं किया जा सकता, इट कैन नॉट बी पॉइंटेड आउट. सो द ओनली प्रोसेस दैट वर्क्स हियर इज़ द प्रोसेस ऑफ निगेशन. आपको सिर्फ ये बताया जा सकता है कि क्या नहीं है. तो जैसे जब हम निर्वाण षटकम की बात करते हैं, शंकराचार्य ने जो बोला था कि तुम न मन हो, न बुद्धि हो, न अहंकार हो, न चित्त हो, न आँखें हो, न कान हो, न नाक हो, न ये हो, न वो हो, पूरे उसमें वही है. तो तुम सब कुछ हटा दोगे, सब कुछ हटा दोगे, उसके बाद क्या बचेगा, बस वही ब्रह्म है. ठीक है, शंकराचार्य सेज दैट विच इज इनडिविजिबल, दैट विच इज एवर ब्लिसफुल, दैट विच इज सिंगुलर, दैट विच इज द इनडिस्ट्रक्टिबल, नो दैट टू बी ब्रह्म. जिसको ना हम तोड़ सकते हैं, जो हमेशा आनंद में है, जो एक ही है और जो कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता. अब अगर हम इन वर्ड्स को ही लें और हम देखें कि क्या है जो डिवाइड नहीं किया जा सकता, हमारे अनुभव में क्या कोई ऐसी चीज़ है जो डिवाइड नहीं की जा सकती, क्या कोई ऐसी चीज़ है जो कभी डिस्ट्रॉय नहीं होगी, क्या कोई ऐसी चीज़ है जो हमेशा आनंद में है, तो ऐसे हम उन चीज़ों को सोचते करते हैं, तो वो ही ब्रह्म है. तो वो हमें ऐसे नहीं मिलेगा, सोचने से नहीं मिलेगा, वो हमें फिर से निगेशन के प्रोसेस से मिलेगा, तो हम निगेट करते जाएंगे. दैट इज़ वॉट ब्रह्म इज, सेज द आचार्य. नॉट अ पर्सन विथ थ्री हेड्स. बहुत सारे लोग ब्रह्म को क्या सोचते हैं कि जो ब्रह्मा, हमने एक इमेज बनाई हुई है ना तीन सरों वाला ब्रह्मा, तो उसको हम ब्रह्म मान लेते हैं, वो ब्रह्म नहीं है, है ना, ना वो विष्णु है, ना वो शंकर है, इन तीनों में से कोई भी नहीं है. ब्रह्म इज़ द इनडिविजिबल, फॉर्मलेस, इनडिस्ट्रक्टिबल, एवर ब्लिसफुल, सिंगुलर एब्सोल्यूट ट्रुथ, सेज द सेज. मतलब ये तीनों, अगर हम फिर से जाएं, इन तीनों का तत्व ही ब्रह्म है. ब्रह्म का तत्व भी ब्रह्म है, विष्णु का तत्व भी ब्रह्म है, और शिव शंकर का तत्व भी ब्रह्म है, और आपका तत्व भी ब्रह्म है, कोई फर्क नहीं है. और आपके घर में अगर कोई चिड़िया अभी बैठी है, उसका तत्व भी ब्रह्म है, सबका तत्व ब्रह्म है. तो और वो ही एब्सोल्यूट ट्रुथ है. Okay, she's saying Shankaracharya has composed odes eulogizing these deities. तो शंकराचार्य ने भी ब्रह्म विष्णु महेश के लिए बहुत सारे ऐसे भजन गाए हैं, कंपोजिशंस हैं जिसमें उनकी बहुत तारीफ की जा रहे हैं. क्यों वो क्यों करा है? क्योंकि कुछ लोगों के लिए जो शुरुआत है जिनकी जर्नी की, उनके लिए वो भी ज़रूरत है. शुरुआत वहीं से होती है, है ना. हम लोगों की भी सबकी शुरुआत ऐसे ही हुई है कि भगवान है, राम है, कृष्ण है, विष्णु है, शिव है, इनकी पूजा करो. दैट इज़ द बिगनिंग ऑफ द जर्नी, है ना. तो जैसे वो कह रही हैं, सपोज तुमको मनाली जाना है तो डिपेंड करता है कि तुम्हारी जर्नी कहाँ से शुरू होगी. किसी की जर्नी बैंगलोर से शुरू होगी, किसी की कलकत्ता से, किसी की दिल्ली से. डेस्टिनेशन सबकी मनाली है, लेकिन जो जहाँ पे आप हो शुरुआत तो वहीं से करोगे ना, आपको तो वहीं से चलना पड़ेगा. तो इसलिए बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, ज़्यादातर लोग ऐसे ही हैं जो अभी बहुत दूर हैं. तो उनकी शुरुआत कैसे होगी? उनकी शुरुआत ब्रह्मा विष्णु महेश से ही होगी. लेकिन आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे तो आपको फिर वो उसको रास्ते को बदलना होगा या वाहन बदलना होगा. जैसे मैं एक और चीज़ बोलती हूँ कि अगर आप सपोज़ मैं पूना से दिल्ली गई, फ्लाइट में गई, फ़्लाइट मुझे कहाँ उतारेगी? एयरपोर्ट पे, है ना. अब एयरपोर्ट से क्या एयरपोर्ट मेरी डेस्टिनेशन है दिल्ली में? नहीं, मुझे घर भी जाना है. अब मुझे घर जाने के लिए क्या एरोप्लेन लेके जाएगा? नहीं लेके जाएगा. वहाँ से तो गाड़ी करनी पड़ेगी, या गाड़ी या ट्रेन या बस या रिक्शा करना पड़ेगा, है ना. तो फिर से व्हीकल चेंज होगा. जब मैं घर पहुँच जाऊँगी तो क्या सपोज़ मैं गाड़ी में घर गई हूँ तो गाड़ी मुझे कमरे के अंदर ले जाएगी, घर के अंदर? नहीं, वहाँ पर गाड़ी को भी छोड़ना पड़ेगा और मुझे खुद पैरों से अंदर जाना पड़ेगा, है ना. तो बिल्कुल ऐसे ही हमारी जो स्पिरिचुअल जर्नी होती है उसमें अलग अलग हमें व्हीकल्स का, अलग अलग पाथ्स का, अलग अलग समय पे अलग चीज़ों का इस्तेमाल करना होता है. दिस इज द रीज़न why, डिस्पाइट नोइंग what ब्रह्म इज, आर scriptures described ways ऑफ worshipping शिव, राम, दुर्गा etc. देयर वर temples हाउसिंग दीज आइडल्स. हेंस फॉर द beginners ऑन this स्पिरिचुअल जर्नी they gave tenets on ways of worshipping deities. तो ये कैसे करते हैं? हमें क्यों हमें ये सब बताया गया है? जैसे तुम बुरे काम मत करो, refraining from bad actions, है ना. अब हम बोलेंगे ब्राह्मण के लेवल पे तो ना कुछ अच्छा है ना बुरा है, लेकिन वो जर्नी कहाँ है? जब तुम वहाँ एंड में पहुँच जाओगे. लेकिन अभी तो चल रहे हो ना, अभी चल रहे हो. तो refrain from bad actions, डू वर्चुअस डीड्स, अच्छे काम करो, मंत्रा चैंटिंग करो, फास्टिंग करो, सर्विस करो, चैरिटी करो, पिलग्रिमेज करो, अच्छे अच्छे स्क्रिप्चर्स टेक्स्ट पढ़ो, है ना, पुराण पढ़ो, कहानियाँ पढ़ो अच्छी वाली. तो तुम जहाँ हो वहीं से तुम्हें शुरुआत करनी पड़ेगी. द इंटेंशन वॉज टू लीड पीपल फ्रॉम द फॉर्म टू द फॉर्मलेस, है ना, साकार से निराकार की ओर. इवेंचुअली निराकार में ही जाना है, लेकिन शुरुआत साकार से होगी. तो अगर कोई महादेव या शिव पुराण या ऐसी कहानियाँ पढ़ते रहते हैं तो ऐसी पॉसिबिलिटी है कि एक समय वो ये क्वेश्चन पूछें कि जब महादेव आँख बंद करके ध्यान करते हैं तो वो किसका ध्यान लगाते हैं. वो शायद तुम्हारे मन में ये सवाल आए, है ना. जब तुम्हारे मन में अंदर से वो सवाल आएगा तब मतलब हमें पता लगेगा कि अब तुम्हारी जर्नी का व्हीकल बदलने का समय आ गया है, है ना. एक तुमने पार कर लिया है पड़ाव. लेकिन जब तक जो साधक है वो इस इंक्वायरी पर नहीं पहुंचता, यहाँ तक नहीं पहुंचता, उनको तब तक कुछ ना कुछ खिलौने बोलो या तरीके दिए जाते हैं कि वो इस पे चलते रहें, है ना. Without the prop of perceptible processes, how else can the uninitiated mind be inclined in this direction? इसके बिना जिनकी अभी आप हम कह सकते हैं बुद्धि कम है या समझ कम है या उनको अभी अभी संसार में ही ज़्यादा उलझे हुए हैं तो उनको यही चीज़ें देनी पड़ेंगी आगे बढ़ाने के लिए. यही रीज़न है कि जो मास्टर्स हैं, गुरु हैं, वो बोलते हैं पहले तुम आसन प्राणायाम करो, है ना. क्योंकि आसन प्राणायाम करोगे उससे क्या होगा? डिसिप्लिन आएगा आपके शरीर में, आपके मन में, बुद्धि तेज़ होगी. जो प्राणायाम होते हैं, जैसे क्रिया का प्राणायाम भी हम हमेशा बोलते हैं, वो सीधा आपके ब्रेन को इम्पैक्ट करता है, आपकी बुद्धि, हमारी बुद्धि ब्रेन से है ना। अगर आपका ब्रेन ही बंद हो तो बुद्धि कैसे काम करेगी। तो ब्रेन के सेल्स को खोलना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे और भी बहुत सारे प्राणायाम हैं जिससे बुद्धि तेज़ होती है। क्रिया योग प्राणायाम से तो आपके बुद्धि के बहुत सारे, आपके ब्रेन के ऐसे सेल्स खुलते हैं जो हमेशा बंद रहते हैं, तभी आपको वो सटल ट्रुथ समझ में आने लगते हैं, इसीलिए वो दिया जाता है। एंड दिस अलाउज द डिसाइपल टू एंगेज इन मंत्रा चैंटिंग विच स्टार्ट्स विद सम प्लीजिंग एक्सपीरियंसेस लाइक सीइंग द फॉर्म ऑफ शिवा, डैजलिंग लाइट, एंड द डिलाइटेड डिसाइपल रन्स टू द मास्टर, गुरुजी आई एम सो हैप्पी टुडे, इन टुडेज मेडिटेशन सेशन आई सॉ दिस एंड दैट एंड द अदर। है ना, वही जो हम बात कर रहे थे, ब्लू लाइट दिखी, ये दिखा, वो हुआ, शुरुआत ऐसे ही होती है, उसमें ही खुश हो जाते हैं और फिर रोते भी हैं जब ये एक्सपीरियंसेस होने बंद हो जाते हैं, है ना, वो भी बहुत रोना आता है। पहले होता है कब होंगे, फिर जब होने लग जाते हैं तो होता है बंद क्यों हो गए। यहाँ पे भी ना माइंड कभी, माइंड की जर्नी एंड नहीं होती कभी एक्चुअली। लेकिन इन सब के थ्रू, डिस्पाइट ऑल दिस, द डिसाइपल स्लोली स्टार्ट्स मूविंग अहेड ऑन द पाथ। है ना, धीरे धीरे जो डिवोशन है वो बढ़ता है, जो वैराग्य है वो ज़्यादा होने लगता है, अबिलिटी टू अंडरस्टैंड, बुद्धि बढ़ने लगती है। एंड देन कम्स अ पॉइंट व्हेन द मास्टर सेज टू द डिसाइपल, Now you are ready to grasp my teachings on Brahman, so let's begin. तब गुरु बोलता है अब तुम तैयार हो ब्रह्म को जानने के लिए, और फिर वो प्रोसेस शुरू करता है। तब तक गुरु भी कभी ये चीज़ ये करो, वो करो, ऐसा करो, वैसा करो, जब तक कि डिसाइपल तैयार नहीं होता तब तक उसको ब्रह्म का ज्ञान नहीं दिया जाता। But in this context, let me caution you that not every guru is an enlightened master. Teachers they may well be, but not all of them are men or women of self-realization. They may well tell you that after that death you will go to Shivlok, but they will be unable to clarify that you can't stay in that place forever either, that you will have to be reborn. अब देखो वो ये क्या कह रहे हैं कि गुरु भी हर कोई एनलाइटेंड नहीं होता। एनलाइटेंड का मतलब जिसने खुद से जाना है, अनुभव किया है अपने तत्व को। तो टीचर्स हो सकते हैं, वो तो हम सबको पता है कि कोई भी चीज़ में बहुत सारी चीज़ें आप पढ़कर भी बहुत अच्छा सुना सकते हो। कभी कभी ऐसा भी इनफैक्ट होता है कि जिसने जाना है उसके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत बुरे हों, वो कभी ना बता पाए किसी दूसरे को, लेकिन दूसरा जिसने नहीं जाना वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया जाए। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, आप लोगों ने गुरजीएफ का नाम सुना होगा, ही वॉज़ अ रशियन मास्टर। तो जो गुरजीएफ थे, ही वॉज जैसे रामकृष्ण, हम एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं, रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद। ऑब्वियसली रामकृष्ण परमहंस जो थे वो तो बिल्कुल जो होते हैं ना एकदम बेसिक और अपना गांव वाले जो होते हैं, बिल्कुल ही पढ़े लिखे नहीं, कुछ नहीं, नॉर्मल सिंपल लैंग्वेज में बात करते थे। लेकिन उनका भी कैसे लोगों ने जाना उनके बारे में, विवेकानंद के थ्रू। विवेकानंद वॉज अ वेरी यू नो अ वेरी गुड ओरेटर, कम्युनिकेटर, चाहे एनर्जी सारी रामकृष्ण परमहंस की थी उनके अंदर, लेकिन उनके थ्रू जान पाए। हाँ, पर यहाँ पे है कि विवेकानंद ने भी जान लिया था, वो एक बात अलग है। तो ऐसे ही जो गुरजीएफ थे वो भी ऐसे ही गाँव में, रशिया के किसी गाँव के थे मास्टर जिन्होंने जाना था, और उनके डिसाइपल थे ऑस्पेंस्की। ऑस्पेंस्की ने नहीं जाना था, लेकिन ऑस्पेंस्की बहुत करीब थे जानने के और वो साथ में रहते थे, तो जो भी गुरजीएफ बोलते थे या बताते थे, जो समझ पाते थे, ऑस्पेंस्की उसको बहुत अच्छे से आर्टिकुलेट कर पाते थे दूसरों के लिए। बहुत, ये काफ़ी टाइम तक चला था। एंड ऑस्पेंस्की को तो बहुत टाइम लगा था बाद में, जब उन्होंने खुद से जाना, दैट वॉज मच लेटर, तो उसकी एक अलग स्टोरी है। तो खैर, बात यहाँ पर ये हो रही है, जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि हम किसी गलत गुरु के चक्कर में बढ़ गए या फ्रॉड गुरु, ऑल दो वो अपने आप में एक बड़ा, बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन मैं एक चीज़, छोटी सी चीज़ यहाँ पे मेंशन करना चाहती हूँ। एक्चुअली कोई भी गुरु फ्रॉड नहीं होता, अगर आप सच में देखोगे ना, बॉटम लाइन है कि कोई भी जिसने नहीं भी जाना जो आपको बता रहा है, और अगर उसको, उसकी बात आपको समझ में आई और उससे आपकी प्रगति हुई, उससे आपको कुछ भी हेल्प मिला, तो वो कैसे फ्रॉड हुआ? आपके लिए तो फ्रॉड नहीं हुआ ना, आपने तो कुछ उससे सीखा। शायद जो बहुत बड़ा गुरु है, जो जानता है, जो आपको बता भी नहीं सकता, वो तो हो सकता है आपकी हेल्प भी ना कर पाता। ये तो आपकी हेल्प कर पाया ना, आपको किससे हेल्प मिली? आप बाद में चाहे जान के बोलो कि ये फ्रॉड था, लेकिन अगर आप इसको डीप इंक्वायरी करोगे तो हर कोई आपकी बुद्धि के हिसाब से आपको जिसकी बात समझ में आ रही है वही सही है, तो कुछ भी फ्रॉड नहीं होता, है ना। लेकिन हाँ, बी वेरी केयरफुल ये सोचने में कि माई गुरु इज़ एन एनलाइटेंड मास्टर। सो उस चीज़ को, क्योंकि तुम नहीं जान सकते, तो उसको पार की करके रखो हमेशा। इट इज़ अ रेयर बीइंग लाइक शंकराचार्य हु वॉज अ कम्प्लीट मास्टर। वो तो कम्प्लीट पूरे थे, वो ज्ञानी थे, एन अकम्प्लिश्ड ज्ञानी, एन अकम्प्लिश्ड डिवोटी, एन अकम्प्लिश्ड योगी। नमामि शमीशन निर्वाण रूपम। नो सूनर ही स्टार्ट सिंगिंग दिस इन प्रेज ऑफ शिवा, महादेव मैनिफेस्ट नॉट फिजिकली बट इन हिज चित्त, एंड द सेम हेल्ड ट्रू फॉर ऑल डेटीज। ही वॉज एक्सेप्शनली एक्स्ट्रॉर्डिनरी, क्योंकि यहाँ पे वो क्या बता रहे हैं, शंकराचार्य ने तीनों पाथ, देखो हम जो मेन पाथ्स बोलते हैं, ज्ञान, भक्ति और योग, है ना। अब आप ज़्यादातर देखोगे कि कोई भी जो गुरु आता है वो एक पाथ से आता है, उसने एक पाथ के अंदर पूरा उसको मास्टर किया है। लेकिन शंकराचार्य ऐसे थे जिन्होंने सारे पाथ्स को मास्टर कर लिया था। एक और हैं जिन्होंने सबको मास्टर किया था, वो हैं रामकृष्ण परमहंस। उन्होंने तो रिलीजन भी अलग अलग, उन्होंने मुस्लिम्स को भी फॉलो किया, उन्होंने तो गोपी बन के, राधा बन के कृष्ण के प्रेम में भी किया, और उन्होंने तंत्र भी किया, मतलब उन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा और हर पाथ को मास्टर करके जाना। तो वो है कंप्लीट मास्टर्स, उनको कंप्लीट एनलाइटेंड मास्टर्स माना जाता है, जिन्होंने सारे पाथ्स को पूरा मास्टर किया हो। वो कह रही हैं कि एक पाथ को मास्टर करना भी एक ज़िंदगी में बहुत मुश्किल है। खैर, हो भी नहीं सकता, एक पाथ भी बहुत लाइफ टाइम्स में मास्टर होता है, और उन्होंने तो तीनों कर लिए थे। इट इज़ कॉमन टू फाइंड गुरुज टीचिंग ओनली योगा, अदर्स गिविंग भक्ति अलोन, एंड येट अदर्स इंस्ट्रक्टिंग ओनली इन ज्ञान। एंड मैनी टाइम्स योगा प्रैक्टिशनर्स कंडेम पाथ ऑफ ज्ञान, वेदांता टीचर्स रिडिक्यूल भक्ति, एंड भक्ति प्रोपोनेंट्स डिराइड प्रैक्टिस ऑफ योगा, वेयर एज ईच लिम्ब होल्ड्स इट्स ओन इम्पॉर्टेंस, सो यू शुड रिस्पेक्ट ऑल पाथ्स, असेस वेयर यू स्टैंड एंड चॉक आउट द पाथ इन सिंक विद योर लीनिंग। तो ये तो आप लोगों ने भी देखा होगा, और ये होता ही है, कभी कभी ज़रूरत भी होती है ऐसा करने की, और कभी ऑब्वियसली जो नहीं जानते हैं वो करते हैं, कि जो ज्ञान बता रहा है वो बोलेगा अरे योग एकदम बेकार है। अगर वो सच में ये बोल रहा है कि योग बेकार है, इसका मतलब उसने ज्ञान के बारे में सिर्फ सुना है, जाना नहीं है, है ना। इसीलिए वो योग को बेकार बोल रहा है, क्योंकि अगर वो योग को भी सही बोलता है तो उसको ये नहीं पता कि मैं दोनों को इंटीग्रेट कैसे करूं, एक साथ कैसे लेके आऊं। या जो भक्ति वाला है वो ज्ञान को रिडिक्यूल कर रहा है, या ज्ञान वाला भक्ति को कर रहा है, या जो भी, ये सब चलता रहता है, ये आप लोगों ने बहुत सुना देखा होगा। जो भक्ति वाले हैं वो बोलते हैं सिर्फ भगवान का प्रेम, उसके अलावा सब बकवास है, सब बेकार है, ये तुम्हें ज्ञान कहीं नहीं लेके जाएगा, ये तुम क्या एक्सरसाइजेस करते रहते हो, योगा आसन कर रहे हो, सांस खींच रहे हो, कुछ नहीं होता, सब बकवास है, ये आपको हर तरह के मिलेंगे। फिर आप योगा के पास जाओगे, वो बोलोगे सिर्फ दिमाग बुद्धि से जानने से कुछ नहीं होगा, जब तक आसन प्राणायाम करोगे कुछ समझ में नहीं आने वाला तुमको, है ना। बट रियलिटी इज़ कि ये सब इकट्ठे हैं और एक साथ चलते हैं, एक दूसरे के अंदर गुंधे हुए हैं। सिर्फ क्या होता है, एक आपका मेन पाथ बनता है, एक मेन, उसके साथ बाकी तीनों भी थोड़े थोड़े चलते ही हैं, सब होते हैं।